ओम शांति। आज सवेरे क्लास चल रहा था, ग्यारह इच्छा छठ का तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी लक्ष्मी और नारायण के चित्र में से बाबा ने लक्ष्मी का चित्र निकाल दिया, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि लक्ष्मी बैठ नारायण के पांव दबाए। इनको देख करके पुरुष लोग स्त्री से पांव दबाते हैं, तो बाबा ने लक्ष्मी को पहले से ही फोटो में से लक्ष्मी को नारायण के चित्र के साथ से मुक्त कर दिया। ग्यारह इच्छा छठ के वाणी का प्रातः क्लास चौथे पेज के आदमी फोटोग्राफर भी बड़ा होशियार था। अब समझता हूँ वाह, जिसकी हम पूजा करते थे वो हम बनते हैं। बात हो रही है ऐसे बैठे पांव दबावेंगे, ये रस्म रिवाज वहां है नहीं। ये रस्म रावण राज्य की है क्या? स्त्री पुरुष के बैठ करके पांव दबावे तो रस्म रिवाज वास्तव में है किस समय की?
यह समय
इस समय संगम युग में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो ये रस्म रिवाज सब चलती है। जो नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो तो विश्व का कंट्रोलर है, सारे विश्व को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि की बहुत मेहनत की आवश्यकता है। बुद्धि की बड़ी कमाल है, तो बुद्धि रूपी पांव में जो थकान होती है उसकी मालिश की बात है। जो लक्ष्मी अपने बुद्धि रूपी हाथों से करती है उन्होंने फिर स्थूल चित्र बनाए दिए हैं, बाकी वहाँ कोई सतयुग त्रेता में स्त्रियां बैठ पुरुषों के पांव दबाए और वहाँ कोई स्थूल रूप में भी थकान हो जाए ऐसी तो कोई बात होती नहीं। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस चित्र में लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो त्रिमूर्ति है उसमें जो नॉलेज है उसको सारा दिन स्मरण करना चाहिए। ये वंडर लगता है। वो लोग तो हेवनली गॉड फादर कहते भी हैं, फिर ये नहीं समझते हैं कि गॉड फादर हेवन की रचना करने वाला है। भारतवासियों का तो कोई एक्यूरेट अक्षर है नहीं। क्यों? जिसको क्रिश्चियन लोग हेवन कहते हैं भारतवासी उसे वैकुंठ नहीं कहते हैं क्या? वैकुंठ कहते हैं ना। अभी तुम समझते हो माया क्या क्या बनाई देती है। एकदम भुट्टू हो जाते हैं, जो बर्थ अपाउंड थे वो बर्थ अपैनी बन गए हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण की चित्र बनाकर तैयार करने चाहिए। शिव जयंती पर बाबा सबको सौगात देंगे, कहे की लक्ष्मी नारायण के चित्र की जड़ चित्र की बात की होगी चैतन्य चित्र की बात की होगी, शिव जयंती होगी तो असली शिव जयंती की बात है या भक्त लोग जो शिव जयंती मनाते हैं दूसरों की देखा धूनी भक्ति मार्ग वाली शिव जयंती उसकी बात है? असली शिव जयंती तो वो होगी जब नारायण के द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता हो जाएगी, सारा विश्व जान जाएगा ये जो नारायण का स्वरूप है, यही त्रिमूर्ति शिव का अंतिम संपन्न स्वरूप है। तो शिव जयंती पर बाबा इन लक्ष्मी नारायण के चित्र की सबको सौगात देंगे, माने सबकी बुद्धि रूपी पॉकेट में ये चित्र बस जाएगा, बाकी जड़ चित्र को बांटने से कोई शिव जयंती नहीं हो जाएगी। इस चित्र पर समझाना बहुत सहज है, त्रिमूर्ति के चित्र पर, शशि चक्र के चित्र पर समझाना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, झाड़ और सीढ़ी के चित्र में समझाना भी कठिन है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत सहज है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, क्या समझाना है? भारत जो नरक है, जहाँ रावण का राज्य है, अनेक सिरों का राज्य है, वो नरक का राज्य बदल करके अब एक का राज्य स्थापन होने वाला है। सचिव में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो था वो अभी फिर स्वर्ग बन रहा है। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कितनी अच्छी रीति समझाने दी जाती है, पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। बाबा भी बंदर खाते हैं, समय भी 10 वर्ष दिया है, खाए में लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसमें नीचे की ओर जो लिखत लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। ये मुरली है 11 जनवरी 1966 की, माने 1966 से पहले ही वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में वो 10 साल की घोषणा कर दी गई थी। उस चित्र में लिखा हुआ था आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है और विश्व युद्ध के पश्चात शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो 66 माने 66 में 10 वर्ष और एड किए तो आता है 76। अभी क्या चल रहा है? 2005। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। तो चित्र में जो लिखत लिखी हुई थी क्या वो झूठ लिखी हुई थी या सच्ची बात लिखी हुई थी? सच्ची बात लिखी हुई थी। तो जो 10 वर्ष की घोषणा चित्र में लिखी हुई है वो चित्र तो अभी एडवांस पार्टी में दोबारा छप करके तैयार हो गए हैं, 30x40 इंच वाले, हूबहू एक्यूरेट जो बाबा ने चित्र छपाए थे उन्हीं की ट्रू कॉपी है। तो उसमें जो 10 साल की लिखत लिखी हुई है वो 10 साल की लिखत है, जहाँ बताया है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। तो क्या 76 में भारत से विकारों और भ्रष्टाचार का अंत हो गया क्या? क्या बात थी? चैतन्य भारत की बात थी। माना जो जड़ जमीन वाला भारत है, है काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उस भारत की बात नहीं है। भारत माना कोई चैतन्य आत्मा है जो सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। वो राम वाली आत्मा के लिए बोला गया, और वो भी शारीरिक रूप से नहीं बोला गया, सिर्फ मन बुद्धि के आधार पर बोला गया। क्योंकि दुनिया में हर कार्य पहले सूक्ष्म रूप में संपन्न होता है, फिर स्थूल रूप में संपन्न होता है। तो भ्रष्टाचार और विकारों का अंत पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा में से होगा या पूरे शरीर में से हो जाएगा? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा शेष्टाचारी बने, तो ये कार्य संपन्न हुआ। माना परमात्मा शिव ने 76 से जिस राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश किया, तो उसके कारण उसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान एडवांस नॉलेज का बैठता है, और वो आत्मा मन बुद्धि से भ्रष्टाचार रहित हो जाती है। क्योंकि सुप्रीम सोल की प्रवेशता है, और ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, तो दो आत्माएं हो गई प्रवेश करने वाली, स्वयं परमात्मा शिव, तीसरा नेत्र शिव नेत्र जिसे कहा जाता है, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिसके कारण शंकर को कहते हैं चंद्रभाल, चंद्रचूड़, और जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं वो राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा वो तो हो गई नारायण बनने वाला व्यक्तित्व, और ब्रह्मा वाली सोल जिसने माँ के रूप में पार्ट बजाया था, वो प्रवेश करके लक्ष्मी का पार्ट बजाती है, जिसे महालक्ष्मी कहा जाता है। कोई ब्राह्मण बच्चियों के द्वारा वो प्रत्यक्षता बाद में होती है। तो एक ही शरीर के अंदर वो डबल स्त्री पुरुष का पार्ट चल जाता है, जिसे कहते हैं अर्धनारीश्वर, हम उसे कहते हैं बाप दादा। एक ही शरीर में बाप की आत्मा राम बाप, और उसी शरीर में दादा कृष्ण की सोल, जो लफुल पार्ट बजाती है। राम वाली आत्मा लाफुल पार्ट बजाती है। पुरुष थोड़ा कठोर होता है, और स्त्री चोला लफुल होता है। तो ये ला और लव का बैलेंस, यही जैसे लक्ष्मी नारायण का आज रूप हुआ। इसलिए जहाँ जहाँ भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं, वहाँ बाजू में एक कमरा बना हुआ होता है, उसमें विष्णु का चित्र भी दिखाया जाता है, कॉम्बिनेशन का पार्ट है। तो बोला कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में 10 वर्ष का समय दिया हुआ है, आगे बढ़ते ही जाएंगे। माना सन 66 के बाद जब 67 में वाणी चलेगी और लक्ष्मी नारायण के चित्र की बात आएगी, तो एक वर्ष कम हो जाएगा, फिर एक एक वर्ष कम करते जाएंगे। भंभोर को आग लगेगी, रावण राज तो जरूर खलास होना चाहिए। इस यज्ञ में भी प्योर ब्राह्मण चाहिए। क्या कहा है? कौन से भंभोर को आग लगेगी? बाहर की दुनिया के भंभोर में, या ब्राह्मणों की यज्ञ के अंदर विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने की बात है? मुरली क्या बोल रही है? इस यज्ञ में भी प्योर ब्राह्मण चाहिए ना। इसका मतलब हुआ कि संक्षेपकर्ता की यज्ञ के अंदर इम्प्योर ब्राह्मण रावण कुंभकर्ण जैसी व्यक्ति के ब्राह्मण घुस पड़े थे और ज्यादा तादाद में घुस पड़े थे। उन आसुरी ब्राह्मणों का सफाया करने के लिए संक्षेपकर की ये घोषणा की गई। तो यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण चाहिए, माना अपवित्र ब्राह्मण भी यज्ञ में घुस चुके थे तो यज्ञ के विनाश, यज्ञ के ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के विनाश की बात बाबा ने की थी 10 साल की घोषणा में, या बाहर की दुनिया के विनाश की बात की थी? ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात की थी। जो ज्ञान के इस रहस्य को नहीं समझ सके उन्होंने बाहर की दुनिया में घोषणा कर दी कि 10 साल के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। वो कार्य तो नहीं हुआ और होना भी नहीं था। तो ऐसी घोषणा से डिसर्विस हुई या सर्विस हुई? डिसर्विस हुई। दुनिया वालों को ब्रह्मा कुमारी आश्रम से और ब्रह्मा कुमारियों की घोषणा से विश्वास उठ गया। अगर सही बात ये बताई गई होती कि ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही स्थापना और विनाश की बात की घोषणा की गई है तो लोगों को विश्वास बैठता। बाबा कहते हैं ये बड़ा भारी यज्ञ है, इतना भारी यज्ञ है, ऐसे नहीं कि संक्षेत्र में जितने ब्राह्मण इस यज्ञ में चल रहे थे वही ब्राह्मणों की दुनिया बनी रहेगी, नहीं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े, माने सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होगी। जो रावण कुंभकर्ण जैसे आसुरी ब्राह्मण है वो सब खलास हो जाएंगे। तो बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने की बात है, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में पवित्र बनेंगे, सारा विश्व पवित्र बनेगा। विश्व में प्रकृति के 5 तत्व भी आ जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सागर, ये पहाड़, ये नदियां, जो नदियां अभी तमोप्रधान बनती हैं तो बाढ़ ला देती हैं, पहाड़ टूटते हैं तो भूकंप आ जाता है, सागर उछाल मारता है तो तूफान आ जाता है। तो ये जो 5 तत्व अभी विनाशकारी हैं, तामसी हैं, वो सब सात्विक बन जाने पवित्रता के बल से। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु है तो कुकुवंशावली। क्या कहा? वो ब्राह्मण माना कौन से ब्राह्मण? बाहर की दुनिया के? वो ब्रह्मा की कुकुवंशावली है, वो ब्रह्मा को जानते हैं, कब हुआ उनकी तो बात ही नहीं। ये तो हम ब्राह्मणों के अंदर ही 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक मुखवंशावली ब्राह्मण है जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को, ज्ञान को धारण करते हैं जीवन में और दूसरों को धारण कराते हैं, वो हुए मुखवंशावली ब्राह्मण। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। और दूसरे वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा के चेहरे, मोहरे और शरीर से प्यार करते थे, आज भी भले मुरली में बाबा ने कई बार बोला कि ब्रह्मा का चित्र फोटो नहीं रखना है, वो आज भी ब्रह्मा का चित्र और फोटो रखते हैं, क्योंकि उन्हें उस शरीरधारी से प्यार है, उसकी गोद से प्यार है, वो उसकी गोद में खेले हैं तो उनको वो गोद ही याद आती रहती है, ज्ञान की बातों पर उतना विश्वास नहीं करते, मुरली की गहराई की बातों में उनकी बुद्धि नहीं जाती। तो इससे क्या साबित हुआ, वो कुखमांसावली कहे जाए या मुखमांसावली? कुखमांसावली हुए, कुखमान गोद। तो वो ब्राह्मण है कुखवंशावली। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुखवंशावली थे। मुख है शिष्टाचारी इंद्रियों वाला और गोद में तो भ्रष्टाचारी इंद्रियां भी होती है। तो कुखवंशावली हुए भ्रष्टाचारी और मुखवंशावली हुए शिष्टाचारी। तो वो ब्राह्मण भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। कहते हैं हमको ब्रह्मा ने गोद लिया लेकिन है कुखवंशावली और तुम हो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को फॉलो करने वाले, तो तुम हुए मुखवंशावली। तो इनकी भी समझानी देनी है। किस बात की समझानी? कुखवंशावली और मुखवंशावली ब्राह्मणों को। आठ एक 67 की मुरली की रहे पॉइंट्स। ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट से भी कितना माथा मारना पड़ता है। वो पूछेंगे तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, क्या पूछेंगे? 67 की वाणी में बोला, माना भविष्य में ऐसा भी टाइम आएगा, ब्रह्मा तो सही छोड़ देते हैं 67 के बाद, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि गवर्नमेंट में केस चला जाएगा इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स के जो जज और ऑफिसर हैं वो पूछेंगे कि ये जो 300-400 की तुम्हारी बारात पल रही है और सैकड़ों की तादाद में ये लोग आ रहे हैं, राजयोग शिविर करते हैं 7-7 दिन और वापस चले जाते हैं, इनके लिए खर्चा कहां से आता है? तो उस समय बाबा ने बोला कि गवर्नमेंट पूछेगी और अभी प्रैक्टिकल में पूछ रही है, पूछेंगे तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, तुम खर्चा पूछने आए हो है? जब हमारा इतना बड़ा परिवार है और परिवार के सारे सदस्य कमाऊ हैं, तो खर्चे की बात तुम क्यों पूछते हो? हमारा तो घरगस्त का यज्ञ है, कोई सन्यासियों में सल तो हम लोग हैं नहीं। जैसे अर्जुन गृहस्थी को पहले ज्ञान दिया गया था, महाभारत में ये बात प्रसिद्ध है, ऐसे ही अभी भी जो गृहस्थी हैं वो अपना धंधा धोरी भी करते हैं, गृहस्थ जीवन भी बिताते हैं, बाल बच्चों का पोषण भी करते हैं और कमाई भी करते हैं। बोर्ड पर देखा है कि क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना, उनको बताना पड़े कि बाप रमतू रमजवाज का नाम सुना है, बच्चों को भी रमतू रमजवाज बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री ऊंचते ऊंचे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को श्री श्री नहीं कहेंगे, ऊंचते ऊंचे नहीं कहेंगे। क्यों? लक्ष्मी नारायण को ऊंचते ऊंच क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो देवताएं हैं। जो लक्ष्मी नारायण होंगे उनमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश नहीं करेगा, वो पवित्र बन गए। उनके पवित्र होने से पहले नारायण का जो स्वरूप है वो शंकर का है। चोला अपवित्र होता है, अपवित्र में वो एवर प्योर शिव प्रवेश करता है अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए। ये बहुत ऊंचा काम है। जो ऊंचा काम करता है उसको ऊंचा स्टेटस मिलता है, इसलिए शिव का टाइटल है श्री श्री शिव बाबा। आज के सन्यासियों ने यह टाइटल रखवा लिया है, श्री श्री 108 श्री जगत गुरु सच्चिदानंद जी महाराज। अब ये मनुष्यों के टाइटल कैसे हो सकते हैं? मनुष्य कौन से पतितों को पावन बनाते हैं? कौन सी पति दुनिया को पावन बना करके देवता बनाते हैं? ये तो बाप का काम है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। क्या? मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुमको का मतलब क्या हुआ? कि जो सामने बैठने वाले हैं, सामने बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं शिव बाबा से, उनको मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ। सारी दुनिया को राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की, वो ही जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। जो ये कथा सुनते हैं वही अमरनाथ बाप के अमर बच्चे बनते हैं। अमर कहा जाता है देवताओं को। तो ये अमर कथा सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी सुनाई थी। उन्होंने तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो। इसे नरक की दुनिया से सैल्वेज करके नई दुनिया में ले जाने वाले हो। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तो ये है यादगार कहां की? वो तो पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर अमरनाथ शिवलिंग बनाए रखा है। पहाड़ की बात नहीं है, ये तो ऊंची स्टेज की बात है कि परमात्मा शिव जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं उस मुकर्र रथ के द्वारा अमरनाथ का पार्ट बजाते हैं, और वहां जो उसके नजदीक जो जो भी पहुंचते हैं वो भी ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो देखो कितने मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। बात तो सब ठगी है, या तो बाप के सन्मुख बच्चे आए रिफ्रेश होने के लिए। बात तो कोई रिफ्रेश होने के लिए नहीं जाते, और ही थकान होकर घर वापस आ जाते हैं। कहां? अमरनाथ की यात्रा पर। तो सबको समझाना है, रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलने हैं। बाप कहते हैं तीन पैर पृथ्वी का लेकर के हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। क्या कहा? इसके लिए कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने की दरकार नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग बना डालो, पब्लिक के पैसे इकट्ठे कर करके भीख मांग मांग के। इसकी कोई दरकार नहीं। सिर्फ क्या करना है? अपने ही घर में कोई भी कमरे में तीन पैर पृथ्वी लेकर के यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। हॉस्पिटल क्यों कहा? जैसे वो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं तो उनमें दिल और दिमाग दुरुस्त किया जाता है, یہ بھی ہاسپٹل ہے. اس میں صرف دل و دماغ ہی درست نہیں کیا جاتا, نئی دنیا آئے گی تو سب کے شریر ہی ریجوینیٹ ہو جائیں گے. کتنا بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں خرچہ کچھ بھی نہیں ہے. ان ہاسپٹلوں آج کے بنانے میں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے. ماؤنٹ آبو کوئی ہاسپٹل بنایا ہے؟ گلوبل ہاسپٹل بنایا ہے, کتنا خرچہ کیا ہوگا؟ بہت لمبا چوڑا خرچہ کیا, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں تب ہاسپٹل بنتے ہیں. باپ کہتے ہیں تم جو ہاسپٹل کھولتے ہو اس میں کوڑی پائی کا بھی خرچہ نہیں ہے. جس گھر میں تم رہتے ہو اسی گھر میں تم یہ یونیورسٹی کھول دو. مرلی میں تو یہاں تک بھی بول دیا کہ تمہارے پاس اگر ایک ہی کمرہ ہے اسی کمرے میں تم اور تمہارے بال بچے پلتے ہیں تو اسی میں کھانا بناؤ, اسی میں سو جاؤ اور اسی میں سویرے اٹھ کر کے جھاڑو پوچھا لگا کر کے کلاس لگا دو. الگ سے کمرہ بنانے کی بھی کوئی درکار نہیں ہے. تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. ہیلتھ ویلتھ اور ہیپینیس ایک سیکنڈ میں مل جاتی ہے. کس کو مل جاتی ہے؟ جس آتما کی بدھی میں یہ گیان بیٹھتا ہے وہ آتما من بدھی ہیلدی بن جاتی ہے, گیان رتنوں سے بھرپور ویلدی بن جاتی ہے. اور جب ہیلتھ اور ویلتھ ہوگی تو خوشی تو ضرور ہوگی. تو ہیلدی ویلدی اور ہیپی یہ تینوں پراپتیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں ایک سیکنڈ میں. بچہ جنما وارثدار ہوا, تم کو بھی نشچے ہوا اور وشو کی مالک بنے. پھر ہے سارا پرساد کے اوپر مدار. اچھا بچوں کو اوم شانتی. اس کے بعد ہے 10167 کی وانی کا بچا ہوا پوائنٹس. بولا ایک ہی گھر میں استری برہمنی بنتی ہے تو پتی شودر بن رہا بن جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتی پتنی ہوں گے تو دونوں ہی شودر ہوں گے, یا تو دونوں ہی پوتر بنیں گے تو دونوں برہمن بن جائیں گے. ایسے ہو سکتا ہے کہ پتنی گیان میں چلے اور وہ برہمنی ہو جائے اور پتی گیان میں نہ چلے تو وہ شودر کا شودر بنا رہ جائے؟ گند اٹھانے والوں کو شودر کہا جاتا ہے. شودر کسے کہا جاتا ہے؟ جو لیٹرن صاف کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے شودر. تو پتی شودر کیسے رہ جاتا ہے؟ کیونکہ پتنی گیان میں چل پڑتی ہے, اس کی بدھی میں گیان بیٹھ جاتا ہے. جب گیان جس کی بدھی میں ایشوریہ گیان بیٹھ جاتا ہے ٹک جاتا ہے تو وکاروں سے اس کی بدھی اٹھ جاتی ہے. وکاری جیون سے بدھی اٹھ جاتی ہے, پرماتما کی یاد میں رہنا چاہتی ہے اور رہتی بھی ہے. بدھی کو اونچی اسٹیج میں اڑائی دیتی ہے, آتم کی استھتی میں استھت رہتی ہے. اور جس کی بدھی میں یہ آتما پرماتما کا گیان نہیں بیٹھتا وہ دیوان میں لپت رہ کر کے دیہ کا سکھ بھوگنے میں لگا رہتا ہے. تو جو دیہ کا سکھ بھوگنے میں لگا ہوا ہے اس کو بتایا شدھ. یہ ساری من بدھی کی بات ہے. من کے ہارے ہار اور من کے جیتے جیت. من اگر کنٹرول میں کر لیا تو وہ سچا برہمن ہے, اور من اگر کنٹرول سے باہر ہے, من بدھی چنچل ہوتی ہے تو اندریاں بھی چنچل ہو جاتی ہیں. اندریوں میں چنچلتا آتی ہے تو پتن ہوتا ہے, شاریرک شکتی کا بھی پتن ہوتا ہے, پھر منسا کا بھی پتن ہو جاتا ہے, तो तन बल के पतन से मन बुद्धि जो है वो ज्ञान रत्नों को ग्रहण नहीं कर पाती। इसलिए बोला है शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। अगर देह अभिमान की मिट्टी वाला पात्र होगा तो उसमें ये ब्रह्मा रूपी जो शेरनी है उसका दूध, ये ज्ञान दूध टिक नहीं सकता। त्रिमूर्ति के चित्र में, त्रिमूर्ति की यादगार में आज भी नोटों में और झंडे में, कोर्ट्स ऑफ आर्म्स में तीन शेर दिखाते हैं। वो तीन शेर किसकी यादगार है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के पार्ट की यादगार है। ये संसार रूपी जंगल में ये तीन शेर हैं, ह्यूमन शेर, जो ज्ञान की दहाड़ मारते हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनमें एक है शेरनी, जिसको अभी कहा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। उनके द्वारा जो ज्ञान की बातें सुनाई गई, वो ज्ञान की बातों की ये शिफ्ट है कि जिन्होंने अपने जीवन में पवित्र रहने का फैसला किया होगा, ब्राह्मण बनने का फैसला किया होगा, क्योंकि ब्राह्मण होते ही है पवित्र, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान रतन ठहरेंगे। और जो दिखाने के लिए सिर्फ ज्ञान में चलते हैं और अंदर में शैतानियां तो भरी रहती है, अपवित्र जीवन जीते रहते हैं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान रतन टिकते नहीं है। तो जिसकी बुद्धि में टिकेगा नहीं, वो दूसरों को भी सुनाई नहीं सकेगा। तो एक ही घर में स्त्री ब्राह्मण बनती है, पति शूद्र बन पड़ता है, बच्चा ब्राह्मण है तो बाप शूद्र है, तो घर में बहुत घोटाला पड़ जाता है, बहुत झगड़ा आतंका हो जाता है। तो घर में भी बड़ी युक्ति से रहना है। क्या हमारा ज्ञान तो गुप्त ज्ञान है? अगर घर में कोई ज्ञान नहीं मानता है, एक ही व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है, तो ये नहीं कि ढोल पीटना है, हम पवित्र हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमको ज्ञान मिले, ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्ञान उसको सुनाया जाता है जो प्यासा हो। भूखे को रोटी देनी होती है, प्यासे को पानी देना होता है, तो ज्ञान भी हर जगह सुनाने की दरकार नहीं है। घर में भी फिर ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है अगर वो पसंद नहीं करते तो। ये अपने अंदर की बात है। अंदर में जान लिया, मस्ती से ऊंची स्टेज में रहो। मान लो पत्नी ज्ञान में चलती है, पति विकारों के लिए जबरदस्ती करता है, तो स्त्री का चोला तो कमजोर है, कोमल है, शारीरिक रूप से तो मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मन के आधार पर तो मजबूत हो सकती है ना। मन को तो कोई नहीं बांध सकता। तो अंदर अंदर अपने बाप को याद करें, जो मनमानी करने वाला पुरुष है वो तो मानेगा नहीं, तो उसमें ज्ञान छांटने की दरकार नहीं है। क्या ये देखो मंदिरों में जाकर के कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, पति पत्नी दोनों इकट्ठे जाकर के कहते हैं, तो हम आपस में भाई बहन हैं। इस तरह की अगर ज्ञान की बातें पति को सुनाई जाएंगी तो उसे क्रोध तो आएगा ही। तो बाबा बोलते हैं बड़ी युक्ति से घर में रहना चाहिए। बाप के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोह भी जब टूटे तब सच्चा ज्ञान उठावे। बच्चा अगर बाप की आज्ञा न मानता हो तो वो बच्चा नहीं है। क्या बच्चा कौन? बच्चा माना रचना और बाप माना रचयिता। तो रचना को रचयिता के कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर रचना रूपी बच्चा बाप रूपी रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो बाप को समझ लेना चाहिए ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा खून नहीं, सपूत है। भूख बसर कहा जाता है ना, वो तो जाकर के बसर का भूख बनेंगे। जो भूख अर्थात भूसा होता है उसको फेंक दिया जाता है, जो बसर अर्थात अनाज होता है, काम की चीज होती है, उसको रख लिया जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक कुकवंशावली और एक मुखवंशावली। जो कुकवंशावली है वो भूख बसर है, भूसे की तरह उड़ाए दिए जाएंगे। जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बाहर की दुनिया की पहले बात नहीं है, वो बात तो बाद में होगी। और जो असली क्राम काम के ब्राह्मण हैं, जो पवित्र रहने वाले ब्राह्मण हैं, ज्ञान को धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, वो बची जाएंगे। कन्याओं को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कन्या का जीवन पवित्र जीवन होता है। खास भारतवर्ष में कन्या की बहुत संभाल करते हैं, विदेशों में इतनी कन्याओं की संभाल नहीं होती है, कहीं भी इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं रात बिरात सारा दिन रात। लेकिन भारत में तो कन्याओं की बहुत संभाल करते हैं, क्यों? क्योंकि भारत में प्योरिटी की बहुत मान्यता है, पवित्रता को बहुत मान देते हैं। सन्यासी भी जब नौ देवियों का पूजन होता है तो नौ कन्याओं को चुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पांव पूजते हैं। क्यों? सन्यासी तो खुद ही पवित्र होते हैं, उन्हें कन्या का पूजन करने की क्या दरकार पड़ गई? भले पवित्र होते हैं लेकिन वो घरघाट छोड़ करके पवित्र बनते हैं, और कन्या तो जन्म से ही पवित्र है, उसकी तो बुद्धि में भी कोई विकार की बात नहीं होती। कन्या को विकारी जीवन जीना सिखाया जाता है बाद में। कन्या अगर पतित बनी तो पावन बनने में बहुत मुश्किलात हो जाती है। इसलिए जो कन्या का जीवन है, अगर कन्या जीवन में ही वो ईश्वरीय ज्ञान के कार्य में लग जाए तो उसको बहुत सहज हो जाता है। इसलिए कन्याओं पर जोर जास्ती दिया जाता है इस बात में, इस ज्ञान में कन्याओं को चलने में ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि वो शिव शक्तियां बन करके पवित्र जीवन धारण करके ईश्वरीय कार्य की संपन्नता जल्दी कर सकती है। कन्या जास्ती पास भी होती है, दुनिया में भी जो छोटे बड़े एग्जाम होते हैं और कन्याएं वहां भी पढ़ती हैं, कुमार भी पढ़ते हैं, दुनिया भी पढ़ाई, ज्यादा पास कौन होते हैं? कन्याएं पास होती हैं। क्यों? क्योंकि कन्या का जीवन पवित्र जीवन होता है, इसलिए वो जो कार्य करती है पवित्रता के बल पर ज्यादा पावर से करती है, पवित्र बुद्धि होती है। तो कन्याओं को खड़ा होना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर्टी का मोह रहता है और कन्या को तो प्रॉपर्टी का मोह नहीं रहता है, वो तो जानती है हमें तो पराए घर जाना है, बड़े होने पर माँ बाप का घर छोड़ना ही छोड़ना है। तो इसके लिए बाप युक्ति बताते हैं, तुम प्रॉपर्टी अपनी क्यों गवाती हो? कन्याओं की परवरिश के लिए तो कन्हैया बाप बनकर के आता है, उनको अपनी प्रॉपर्टी गवाने की दरकार नहीं है। जिस समय ब्राह्मण उनको कहता है जब शादी होती है ना, तो ब्राह्मण कन्या को कहता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, उनकी आज्ञा पर चलना है, तो उस समय लिखवाए लेना चाहिए। जवान पर तो आजकल भरोसा नहीं है, कोई ने आज जवान बोल दी, एक बार लिखा 100 बार बक्का, मुख से कोई बक्का रहे और एक बार लिख दे तो दोनों बातें बराबर हो जाती है। तो किसी की जवान पर भरोसा नहीं है, जिस समय हथियाला बांधे तो लिखवा लेना चाहिए, जब लिख देगी तो स्त्री फिर कहां जाएगी? मतलब क्या हुआ, आज्ञा पर चली नहीं तो जाओ अपने बाप के पास। स्त्री को तो आज्ञा पर चलना ही है, ये ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं कि बाप से सुना फिर यहाँ की बातें यही रह गई, जो भी ज्ञान सुना है उसको अच्छी रीति धारण करके मनन चिंतन मंथन किया जाना चाहिए। कहते हैं साथ ले आओ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाते हैं, बाकी सबको मुक्ति दे देते हैं। माना जो बच्चे बाप से सन्मुख आकर सुनते हैं, उन सन्मुख आने वाले बच्चों को बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, और जो सन्मुख आकर नहीं सुनते हैं, उन सब 500-700 करोड़ आत्माओं को शरीर छोड़ करके वापस परमधाम जाना पड़े। ये महाभारत लड़ाई जो सामने खड़ी है, यह महाभारत लड़ाई मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलती है। कौन सी महाभारत? महाभारत लड़ाई, महाभारी महाभारत लड़ाई जो भारत से निकलती है। चैतन्य भारत भी है, सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्तित्व है, राम वाली सोल, और फिर भारत माता भी कहा जाता है। भारत माता कहा जाता है इसका मतलब कोई स्त्री चोला भी है। स्त्री चोले को आगे किया जाता है और पिता पीछे से रहता है, न कि भारत माता कोई विधवा माता है, विधवा तो नहीं होगी, जरूर पीछे से सपोर्ट देने वाला कोई पिता भी है। तो बोला ये महाभारी महाभारत लड़ाई लगेगी जो लड़ाई भारत से निकलती है, माने ये लड़ाई की चिंगारी विदेशों से नहीं आती, भारत के अंदर से आती है। वैसे भी देखा जाए शास्त्रों में महाभारत लड़ाई का कारण कौन बना? अच्छा राम रावण के युद्ध का कारण कौन बना? अच्छा देवासुर संग्राम का कारण कौन बना? हैं? इतनी जाति बनी ना? रावण रावण की लड़ाई का मुख्य मुद्दा था सीता, और महाभारत लड़ाई का मुख्य मुद्दा द्रौपदी बनी, और देवासुर संग्राम में लड़ाई का मुख्य कारण कौन बनी? लक्ष्मी। तो ये भारत माताओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, उस धरणी माता के दुख को दूर करने के लिए भगवान को खास खास करके सृष्टि पर आना पड़ता है। तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई भारत से निकलती है, विदेशों से नहीं निकलती। भारत की माताओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो भगवान भारत में आते हैं और उनके प्योरिटी की रक्षा करते हैं। इन सब बातों को पहले तुम नहीं समझते थे, अभी बाप ने समझाया है तो समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी, आज्ञाकारी, सपूत, फरमान बरदार, सर्वसेवल बच्चों को सब मधुबन वासियों सहित आज बुधवार के दिन माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। चुप नहीं बैठो सच्चाई के लिए, ये नहीं किसी ने झूठी कथा सुना दी तो उनकी झूठी कथा सुन करके सत्यवचन महाराज कर दिया तो सचखंड की स्थापना करने के निमित्त बने या झूठखंड की स्थापना करने के निमित्त बने, झूठखंड स्थापन करने के निमित्त बन गए ना, तो रावण संप्रदाय के बन गए ना। इसलिए जाओ भले, लेकिन जाने के साथ साथ ये लक्ष्य रखो कि हमको सचखंड की स्थापना करनी है, झूठ खंड की स्थापना होने नहीं देना। और
पहले हम लोग सभी लोग मिलकर के बाबा का घर बनाया, उस समय बनाया, अभी तो दूसरे वाले ज्यादा लोग नहीं, चार लोग, चार लोग हम लोग, वो लोग करंट बिल माना बिजली के पैसे लोग नहीं दे रहे, लोग आ रहे थे नहीं दे रहे, हम लोग जाना पड़ते
बना रहते, वो लोग अपना मर्जी से सब कुछ करते रहते थे।
तो आप अपना गीता पाठशाला खोलो, गीता पाठशाला में क्लास करो,
गीता पाठशाला खोलो, हमारा घर में खोला,
तो वहाँ जाने की दरकार क्या रहेगी, अगर जाओगे तो उन्हें पैसे भरने पड़ेंगे।
ये बाबा
से क्यों पूछ रहे हो,
नहीं जाने तो, नहीं जाने तो बोरा बंद करना पड़ता है,
क्या क्या बंद करना पड़ता है, वो जाने उनका काम जाने, वो सन्यासी तो पेट का धंधा कर रहे हैं, वो सच्ची बात सुना रहे हैं क्या, वो भगवान को छुपा रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वो दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम किया और तीनों दादियों के तीन चित्र लगा दिए पोस्टरों में, ये त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति हो गई, त्रिमूर्ति शिव को प्रत्यक्षता हो गई, तो त्रिमूर्ति शिव को छुपाया या प्रत्यक्ष किया, तो उल्टा धंधा करने में सहयोगी बनते हैं।
बात ऐसी पूछ कर
नहीं बनना चाहते,
जाने के लिए
माना के करेंगे। बाद में ऐसे करेंगे तो
पूछने की बात नहीं है, इसमें तो सीधी सी बात है कि हम तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, हम रावण राज्य की स्थापना में हम सहयोगी क्यों बने।
घर घर में जीते करके एक साल हो गए,
मैंने
बोर्ड नहीं लिखा,
नहीं
रखा, लेकिन उसमें
क्या
लिखना है आध्यात्मिक शक्ति
गीता पाठशाला, में तेलुगु में भी लिख दो, हिंदी में भी लिख दो, अभी है या नहीं है, रामधाम में आत्माएं अभी भी है, अभी भी आ रही है, लेकिन कीड़े मकोड़े मिसल आत्माएं हैं, जो असली मनुष्य आत्माएं हैं वो तो मनु अर्थात ब्रह्मा के आने के साथ साथ ही आ जाती है। मनु का ब्रह्मा का जब तक पाठ चलता है वो 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इस पृथ्वी पर आती है, बाकी 700 करोड़ की जो आबादी बताई वो तो कीड़े मकोड़े मिसल आत्माएं हैं, एक जन्म लेने वाली आई और खलास हुई, उनकी कोई मनुष्यों में गिनती थोड़ी की जाएगी। मनुष्य कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को, तो वो आत्माएं तो ऊपर से आकर के नीचे इस पृथ्वी पर आती है, एक ही जन्म उनका होता है, वो ज्ञान की गहराई क्या समझेंगी, वो तो जानवर मिसाल है, इसलिए उनकी क्या चिंता। जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनका उद्धार होना है परमात्मा के द्वारा, वो ही पक्के देवताएं हैं, बाकी कम जन्म लेने वाले तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। आत्माएं तो ऊपर अभी भी है और अंत तक उतरती रहेंगी। जब यहाँ से जाना शुरू होगा तो वहाँ से आना बंद हो जाएगा, सारी आत्मा नीचे आ जाएगी। पैसा क्यों देना उनको? उनको खाने आने के लिए कुछ कुछ दे दो जिससे वो बैठ के खाना खा ले। अगर तुम पैसा देंगे वो जब पैसे इकट्ठे करके शराब पी आएंगे जाके।
चावल दे सकते हो बाबा? चावल दे सकते?
अच्छा चावल वो भेज देते
देना खाने के।
और दिल्ली में देखो जाकर के थोड़ी थोड़ी ढेरियां बना बना करके बैठ जाते हैं, बेच देते हैं और बैठ करके शराब पी जाते हैं।
ऐसी आत्मा
दे रहे हैं थोड़ी ना, जीने का अधिकार सबको है, जिंदा रहने का सभी को अधिकार है। कीड़े मकोड़ों को भी जिंदा रहने का अधिकार है। कीड़े मकोड़े तब बढ़ते हैं जब हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं। इसलिए जैन धर्म में तो मानते हैं कि कीड़े मकोड़ों को मारना भी नहीं चाहिए, वो मंजन भी नहीं करते कि दांतों के कीड़े मर जाएंगे। उन कीड़े मकोड़ों में भी आत्मा होती है।
बाबा
है
इस साल खली का एंटी शूटिंग पूरा हो गया, पूरा होता है ऐसे बोला
है।
फिर बाद क्या शूटिंग करता है?
फिर बाद में अभी विष्णु का पार्ट नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं चलेगा, मनसा और वाचा का ही चलता रहेगा। ये वाचा से अभी कुछ हो पाया?
शूटिंग सचिव का ऐसा होता
है
वो शूटिंग विष्णु का शूटिंग चलता है।
हाँ विष्णु का शूटिंग चलता है लेकिन वो भी चार अवस्थाओं से पकार होनी है।
सचिव से आज से
सचिव आज से लेकर के कल युगांत तक
वैष्णुदेव आ जाएगी?
क्यों नहीं आएगी? आएगी नहीं तो विष्णु की मूर्ति कैसे मानी जाएगी?
2006 में आएगा,
डेट है ना, उस मत करो डेट का दावा बोला।
2036
बाबू मुरली में बोला
क्या?
2006 में विष्णु बात शुरू होगा।
30 साल
मुरली में बोला?
अरे नहीं नहीं 30-33 साल ब्रह्मा के, 30-33 साल शंकर के, 30-33 साल विष्णु के। इसमें क्या न समझने की बात क्या है? 33 साल और 33 साल 66 साल हुए है, 36-37 में 66 साल, 66 ईयर जोड़ दो कितना आया? 2006 आ गया। और अभी तो अद्वैतवाणी में भी बोल दिया, अफ्रीका वालों ने शक्ति सर्वित करना शुरू कर दी। क्या कहा? जो सर्विस करना चाहिए वो अफ्रीका वालों ने वो सेवा शुरू कर दी। इसका मतलब एडवांस ज्ञान वहाँ पहुँच चुका है, है।
पानी चला
सबसे ज्यादा हीरा कहाँ बनता है? हीरा पैदा कहाँ होता है? अफ्रीका में पैदा होता है, तो समझ लो ये हीरों का संगठन तैयार हो रहा है वहाँ से।
लेकिन सर्विस करो, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मेरे
पूछने की बात ये होगा, अगर उधर जाने तभी इसमें नहीं होगा, पूरा जानते हैं लेकिन पूरा भूखे में पका नहीं चलते। पूरा जाते में जो भी जाते
हैं
तो भूखे में नीने में पका नहीं चलते।
चलो वो तो एडवांस में कोई पक्के नहीं करते, उसके लिए क्या करेंगे? स्टूडेंट सब एक जैसे थोड़े ही होते
हैं। हम लोग उधर जाना बंद करेंगे तो वो भी तंत्र पूरा बंद हो जाएगी।
बंद हो जाएगी तो क्या होगा?
पांच लोग समझेंगे ब्रह्म कुमारी का काम हो गया, डब्बा खोल कर दिया एग्जाम से है ना।
डब्बा खोल वो बंद कर दे तो खोल देना,
खोल दिया
यहाँ नहीं खोल दिया उसी जगह पे खोल देना। जब वो बंद करके चले जा रहे तो उसी जगह तुम खोल लेना।
खोल सकते
हैं क्यों?
मना वो जो जो माउंट आबू दिया लोग
माउंट
आबू,
चलो कोई भी नाम दिया हो, जो व्यक्ति उठ के चला गया तो तुम वहाँ खोल सकते हैं।
लेकिन वो लोग ताला लगा के चले जाएंगे तो
ताला लगा के चले जाएंगे तो किराया कौन देगा?
ताला तो किराया नहीं फ्री है, ये लोग ही बनाया।
हम सभी लोग बनाया
बीच में खेलते
एक साल में
बनाया। लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुमने बनाया? क्या प्रूफ?
ये लोग खुशी से बनाया, सभी लोग मिलकर के बनाया।
क्या प्रूफ क्या है?
सुब्रमण्यम
भाई के पास है, कागज है, लोन वगैरह का
कागज है। ये चार लोगों का ये मेंबर जमीन एक भाई दिया पहले वो भाई मर गया। सारे भाई लोग इकट्ठे बना के हो वो बनाने के बाद जमीन का बेच इनका पता है ना वो चार पांच आदमी का नंबर से रख के वो नाम पर रजिस्टर कर दिया। चार पांच लोग क्या करेंगे सोच के करेंगे तो वो करना ऐसा करना
चार पाँच कौन है उसमें एडवांस में है क्या? चार पाँच भाई होंगे
तीन लोग
अब जो उस जगह के मालिक है वो तो सारे एडवांस वाले रहेंगे। तो एडवांस क्या सुना धरा कैसे घबराने किस बात का?
घबराने के ना जाएंगे तो सब बनता है ना।
हाँ सुना
जाने से बिजली का कुछ पैसा जाना पड़ता है बिजली के लिए
वो तो जब ज्ञान सुनाओगे तो अपनी अपना माल बेचोगे
तो सुना दिया।
जब माल बेचोगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तुम ये कहो कि हम बात भी अपनी चलाएंगे और खर्चा भी नहीं देंगे। हाँ ये जरूर तुम समझा सकते हो कि यहाँ तो गृहस्थियों का ज्ञान है, ये सन्यासियों का ज्ञान नहीं है। तो इस स्थान पर कोई गृहस्थी युगल बैठेगा ज्ञान सुनाने के लिए। क्या कोई सन्यासी को हम नहीं बैठने देंगे? ये कह सकते हो जो बाबा सन्यास धर्म की स्थापना करने आया है कि प्रवृत्ति मार्ग के सनातन धर्म की स्थापना करने आया है? फिर तो ज्ञान सुनाने का हक जो है वो किसी युगल को दो।
एक
माता जी वो युगल है क्या?
युगल पढ़ाई आने वाला है जीके में कोई युगल नहीं।
पढ़ाने
वाला पढ़ाई कॉल
पढ़ाने वाला अच्छा
पढ़े लिखे लोग नहीं अनपढ़
है। अच्छा जीके
वाला अच्छा
वो लोग आ रहे जा रहे हैं उनके कंट्रोल में रखा लेकिन सारा इधर ही आ गए एडवांस में आ गए सभी जो कुछ है ऐसे ही है। तीन चार लोग
कोई बात नहीं। अब आखिर वो भी तो बाबा के बच्चे हैं आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। उनको भी अपना पेट पूर्ति होने दो है तो अपने अलग गीता पाठशाला खोल करके अपना काम करो।
अमृतशाली यहाँ कर रहे हैं
मेरे घर। हाँ
बस कर क्या लेकिन शाम को एक बार वहाँ
जाते हैं तो वहाँ सर्विस करो
माना सुनते नहीं है ना समझेंगे ना दो हो गए ऐसे समझेंगे
दो काई के लिए हो गए
इसलिए समझेंगे
दो काई के लिए हो गए। घर में चार भाई होते हैं तो कोई चार हो जाते हैं क्या?
अभी जाएंगे तो बिजली बिल पूछ
रहे हैं
इसलिए तो पूछ रहे हैं बता दीजिए ना कितना बार
पूछ रहे हैं बताया। अगर तुम वहाँ जाके सर्विस करो ज्ञान की बातें सुनाने का तुमको मौका मिलता है तो थोड़ा बिजली भर देने में कोई अंतर नहीं पड़ता है।
अगर सर्विस होता है तो बाबा का फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना तो फिर बजाने से फायदा क्या? वो लोग बैठ कर भी सुना रहे ना उन लोग पढ़ रहे
को क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे वो प्रश्न पूछना शुरू कर दो
प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे
झगड़ा हो रहा है ना झगड़ा किस बात का? पढ़ाई तो पढ़ाई है तो सच्चाई तो सच्चाई है झगड़ा किस बात का?
बहुत पढ़ाई सुना है बाबा सुनते हैं
जब टीचर पढ़ाने वाला पढ़ाएगा दो और दो मिलके पांच होते हैं। जब टीचर ये पढ़ाई पढ़ाएगा दो और दो पांच हो जाते हैं तो स्टूडेंट तो पूछेगा ना ये दो और दो मिलके चार होंगे या पांच होंगे? इसमें लड़ाई की क्या बात है? इनकी पढ़ाई कौन पढ़ेगा? बिल्कुल और क्या नहीं तो ज्ञान किस बात का, बूढ़े अगर रिजुविनेट होकर के नौजवान न बने तो
अंदरों की
सब लोग
की आ जाए।